नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राजधानी पटना समेत देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पश्चिम चंपारण जिले से अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। 780 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य सरकार पटना में पिछले दिनों आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए निवेश समझौतों पर अमल के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करेगी। और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी बिहार को राजकीय खेल अकादमी में मार्च महीने में आयोजित होगी प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।
रोजगार मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी और अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 50 शहरों में 13 मेले आयोजित किए जा चुके हैं। इन मेलों में अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं, जो विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देश भर से चुने गए नव नियुक्त युवाओं को गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाओं जैसे विभाग में नियुक्त किया जाएगा। यह मेला रोजगार सृजन को शीर्ष प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। यह रोजगार मेला राष्ट्र निर्माण और स्वरोजगार में युवाओं को भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इधर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर के छपा स्थित CRPF के ग्रुप केंद्र में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यहां जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पश्चिम चंपारण जिले से अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के बगा दो प्रखंड के संतपुर सोहरिया पंचायत के थारू टोला घोटवा से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे और लोगों की राय भी जानेंगे। प्रगति यात्रा के क्रम में श्री कुमार 780 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। वे थारू जनजाति निर्मित उत्पादों को अवलोकन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री का शिकारपुर गांव जाने का भी कार्यक्रम है। वे वहां मनरेगा पार्क, तालाब, विवाह उत्सव भवन और पुस्तकालय सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और मुख्य सचिव भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का पहला चरण 28 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान वे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले का दौरा करेंगे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को बिहार के विकास के बारे में जानकारी देना है।
हम सबों के नेता बराबर मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में जाते रहते हैं, यात्रा करते हैं जिला में और सुनते हैं लोगों की समस्या, सुनते हैं किसी प्रकार की कोई बात होता है उसको सुनते हैं और उसके लिए काम करते हैं, ये तो अच्छी बात है ना।
इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा की आलोचना करते हुए कहा कि यह यात्रा राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग है। राज्य सरकार पटना में पिछले दिनों आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए निवेश समझौतों पर अमल के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करेगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए प्रत्येक 5 से 10 MOU पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी निवेश की प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय में सहयोग करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि एक वर्ष के अंदर निवेश की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक के दौरान इस संबंध में हुई प्रगति की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। पटना में हुए निवेशक सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की 423 कंपनियों ने राज्य में 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया था। ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा है कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व की योजनाओं के तहत डीजल चालित 8,20,000 पंप सेटों में से अब तक कुल 3,60,000 पंप सेटों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए विभाग 3 महीने पहले ही निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लेगा। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। यह राष्ट्र की प्रगति में किसानों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान और सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सहित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सुरक्षा और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके जोखिम को कम करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेगी। साथ ही केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार करेगी। हरियाणा के सूरजकुंड में कल से शुरू हुई बिहार भाजपा कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन इस पर सहमति बनी। पार्टी सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर आम लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा। बैठक में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए का साझा कार्यक्रम चलाने के साथ ही अगले 3-4 महीने तक के संभावित कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। बैठक आज भी जारी रहेगी। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तथा नित्यानंद राय समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। जदयू का नारी शक्ति रथ और कर्पूरी रथ गांव गांव में जाकर राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेगा तथा मतदाताओं को जागरूक करेगा। कल पटना प्रदेश कार्यालय से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री झा ने कहा कि 2 महीने तक ये रथ विभिन्न जिलों का भ्रमण करेंगे और राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों के बीच रखेंगे। बिहार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। राजगीर खेल अकादमी के इंडोर हॉल में मार्च महीने में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकर ने बताया कि प्रतियोगिता में 14 देश भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के भाग लेने की संभावना है। श्री शंकरन ने बताया कि आयोजन के सिलसिले में कल अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष और एशियन कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष पटना पहुंचे थे। गौरतलब है कि बिहार को दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। पहली बार वर्ष 2012 में पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन हुआ था। ओडिशा के कटक में खेले जा रहे विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मैच में बिहार ने नागालैंड के खिलाफ पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 279 रन बना लिए हैं। बिहार की ओर से सार्थक झा ने शतक जमाया। पूर्णिया में आयोजित 14वीं बिहार सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में पटना की टीम विजेता बनी है। पूर्वा हवा के प्रभाव से प्रदेश का अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसके चलते अभी कड़ाके की ठंड के आसार नहीं है। 25 दिसंबर से औसत तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड में और कमी आएगी। पूर्णिया जिले के धमदाह थाना क्षेत्र के ठोकबा गांव में एक पिकअप वैन की चपेट में आने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 7 अन्य घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। इधर किशनगंज जिले के बहादुरगंज गुदरी बाजार स्थित एक घर की झरझर दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। दूसरी तरफ बक्सर गंगा पुल पर एक ट्रैक्टर और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अन्य घटना में कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव में एक ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। पूर्णिया के गुलाबबाग मंडी में पुलिस ने छापेमारी कर 1 करोड़ रुपए मूल्य की चाइनीज लहसुन जब्त की है। पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है। सहरसा साइबर थाने की पुलिस ने गेमिंग ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह के 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार में 10 निवेशक पर 1 नोडल अधिकारी तैनात होंगे, निवेशक सम्मेलन में हुए करार को 1 साल में जमीन पर उतारेंगे। दैनिक जागरण ने लिखा है, नीतीश की प्रगति यात्रा आज से पश्चिम चंपारण के थारू टोला से होगी शुरुआत। प्रभात खबर की सुर्खी है, एनटीए पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए समन्वय समिति बनी। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, बिजली कंपनियां अब खुद ही दरें घटा बढ़ा सकेंगी। राष्ट्रीय सहारा ने भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगा एनडीए। आज अखबार के शब्द हैं, बिहार और बंगाल की पानी में सबसे ज्यादा आर्सेनिक, फसलों को कर रहा प्रभावित। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राजधानी पटना समेत देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पश्चिम चंपारण जिले से अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। 780 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य सरकार पटना में पिछले दिनों आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए निवेश समझौतों पर अमल के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करेगी। और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी बिहार को राजकीय खेल अकादमी में मार्च महीने में आयोजित होगी प्रतियोगिता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।